उन्हें फरीद खान को अपनी भतीजी की प्रॉपर्टी चाहिए थी, सो उन्होंने ये सब प्लान किया।
मगर ताया अब्बू, वो तो सादिया से मोहब्बत करते थे, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं?
अरमान ने हैरानी से कहा। वो ये सब जानकर काफी हिल गया था। उसकी तो पहले से ही सादिया से नहीं बनती थी, उसे लगता था कि सादिया गलत है, मगर आज उसे समझ आ रहा था कि असल में गलत कौन है। कोई मोहब्बत मोहब्बत नहीं थी, जुबैदा बेगम ने ठंडे लहजे में कहा। उसे अपनी भतीजी से नहीं, उसकी प्रॉपर्टी से मोहब्बत थी। तुम लोगों को ये सब समझ नहीं आएगा। अरमान ने बिना कुछ कहे टेबल से अपना फ़ोन उठाया और वहां से चला गया। पीछे जुबैदा बेगम उसे देखती रह गईं। अरमान का मूड बेहद खराब हो चुका था। जाते हुए उसने किसी की तरफ देखा तक नहीं। इसे क्या हो गया? जुबैदा बेगम ने हल्की झुंझलाहट से कहा। इसे सादिया के लिए हमदर्दी हो रही है? पास बैठी माहिरा ने तन से कहा। कल इसकी मंगनी है और इसका हाल देखो, अभी तक कपड़े भी फाइनल नहीं किए इसने। जुबैदा बेगम अब अपने बेटे की फिक्र में थी, लेकिन माहिरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अरमान गाड़ी लेकर अपने रेस्टोरेंट की तरफ निकल गया था, लेकिन उसका ध्यान सड़क पर कम और अपने ख्यालों में ज्यादा था। उसके दिमाग में बार बार नूर का चेहरा घूम रहा था। वो दोनों अक्सर छत पर मिलते थे, वहीं उनकी छोटी सी दुनिया थी जहां वो बिना किसी डर के बातें कर सकते थे। जब नूर के एग्जाम अच्छे नहीं हुए थे और वही बात चल रही थी, अगर मैं फेल हो गई तो? नूर ने हल्के टेंशन भरे अंदाज में कहा था। बातों बातों में रेहान का जिक्र आ गया। नूर ने अचानक हंसते हुए कहा, रेहान भाई के पास क्या अलादीन का चिराव है जो सब चेंज करवा देंगे? मतलब अगर मैं फेल हो रही हूं तो वो मुझे पास कैसे करवा सकते हैं? रेहान ये बात नूर से कह चुका था कि अगर जरूरत हो तो वो यूनिवर्सिटी में उसके पास होने की कोशिश कर सकता है। उसकी बात में मजाक था, लेकिन सवाल भी था। चिराग तो नहीं है, अरमान ने तब कहा था, लेकिन उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, पैसे देकर बहुत कुछ करवा सकते हैं। नूर ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तो क्या आप नहीं करवा सकते? उसका सवाल सीधा था और थोड़ा मासूम भी। अरमान कुछ पल के लिए चुप हो गया था। मैं नहीं करवा सकता, मतलब अभी मुझे इन सब चीजों की उतनी नॉलेज नहीं है। उनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो हर काम पैसे देकर करवा सकते हैं। नूर ने भौं उठाई। आपके पास पैसे नहीं है? उसके सवाल पर अरमान हल्का सा मुस्कुराया। पैसे मुझे डैड से मांगने पड़ते हैं, नूर हंस पड़ी थी। फिर उसने चिढ़ाते हुए कहा, तो रेहान भाई के बराबर आने में आपको अभी 15 साल लगेंगे? अरमान ने सिर हिलाया। मैं उनके बराबर आना ही नहीं चाहता, और आ भी नहीं सकते, नूर ने तुरंत कहा। अरमान ने आंखें से कोड़कर उसकी तरफ देखा। मतलब मेरे पास दिमाग नहीं है? नूर ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। दिमाग तो है, मगर रेहान भाई के पास दिमाग ज्यादा है। अरमान उसकी बात पर हंस पड़ा था, लेकिन अंदर कहीं उसे चुभा भी था। वो उठकर जाने लगा तो नूर ने पीछे से कहा, ऐसे किसी के पास दिमाग नहीं आ जाता अरमान। अब गाड़ी चलाते हुए वही सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी जिद भी। इतना भी कम नहीं हूं मैं, उसने खुद से धीरे से कहा। सड़क पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। रेहाना बेगम वीडियो कॉल पर सादिया से बात कर रही थी। तुम लोगों के बिना तो घर पर मेरा दिल ही नहीं लग रहा, उनकी बात पर सादिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आप चाचा जान की तरफ चली जाएं या फिर माहिरा के गेस्ट हाउस चली जाइए, वहां सगाई की तैयारियां भी देख लेंगी। पास ही सोफे पर बैठा रेहान चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। रेहाना बेगम ने झुंझलाकर कहा, जुबैदा ऐसी तैयारी कर रही है मंगनी की जैसे मैं बीच में कुछ कर दूंगी। हमारे घर में क्या कोई लड़की नहीं है जो मुझे अरमान मंगनी में कोई दिलचस्पी होगी? उनकी शिकायत साफ छलक रही थी। सादिया ने धीमे लहजे में कहा, असल में वो बहुत परेशान है, आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। इसी बीच रेहान उठकर पास आ गया, अब वो भी ध्यान से सुन रहा था। सादिया फिर बोली, वो इसीलिए जल्दी कर रही हैं, अगर मंगनी की खबर बाहर चली गई तो कोई आकर सब बिगाड़ सकता है। रेहाना बेगम चौंक गई। कौन कौन बिगाड़ेगा? सादिया की आवाज़ धीमी हो गई। वही जो हमें बेचैन करके अपने घर चली गई थी, रेहाना बेगम तुरंत समझ गई। नूर? और नहीं तो क्या, सादिया ने कहा। कहीं उसे खबर मिल गई तो वो आकर अरमान की मंगनी तुड़वा सकती है, तमाशा भी कर सकती है, रेहाना बेगम ने नापसंदगी से कहा। इतनी जलील होने के बाद भी उसमें इतनी हिम्मत होगी कि वापस आकर सबको फेस करे? सादिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ डबल मीनिंग में कहा। उसमें तो एक छत पर 3-3 चांद उतारने की भी हिम्मत है। क्या मतलब है तुम्हारा? रेहाना बेगम ने शक भरी नजर से पूछा। उसी वक्त माहिरा भी वहां आ गई और आकर रेहाना बेगम के पास बैठ गई। सादिया ने एक नजर इधर उधर घुमाई, फिर धीमे लेकिन साफ शब्दों में बोली, आप मानेंगी नहीं, लेकिन अरमान और नूर के रिश्ते की गवाह मैं खुद हूं। ये सुनकर रेहाना बेगम सन रह गई। माहिरा ने भी हैरानी से उसकी तरफ देखा। माहिरा ने फोन पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया।
फैजान का तो मेरे पास सबूत भी है, मुझे पता है, सादिया ने कहा। इतना सुनते ही रेहान से रहा नहीं गया, उसने आगे बढ़कर फोन छीन लिया और कॉल काट दी। वो गुस्से में सादिया की तरफ मुड़ा। बस करो ये बकवास, सादिया अचानक खड़ी हो गई। अरमान की मंगनी हो रही है, इसमें ऐसा क्या गलत है, सादिया ने तीखे लहजे में कहा। उसने हमारा इंतजार भी नहीं किया, रेहान ने कहा। हो सकता है वो आपकी गैर मौजूदगी में खुश रहना चाहता हो, इसलिए उसने ये फैसला लिया हो, सादिया कहने लगी। मैं बताती हूँ आपको सारी बात, सादिया ने गुस्से में कहा। आपने नूर को अपनी बहन माना था और उसके साथ जो भी हुआ उस पर आपको गुस्सा तो आएगा ही ना, इसीलिए अब आपकी गैर मौजूदगी में मंगनी हो रही है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने से तेज आवाज आई। वो मेरी बहन नहीं थी, रेहान गुस्से में बोला। उसकी आंखों में सख्ती साफ नजर आ रही थी। और ये सब बकवास बंद करो, कमरे से बाहर जाओ। सादिया एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर धीरे से अपने आप से बुदबुदाई। जानती हूँ, बहन तो वो किसी की भी नहीं हो सकती, उसके लहजे में तंज था। फिर वो वहीं सोफे पर बैठ गई और धीमे से बोली, लेकिन आपने भी कुछ अच्छा नहीं किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सादिया को ये नहीं पता था कि जिस खेल की वो बातें कर रही है उससे कहीं बड़ा खेल उसके साथ खुद खेला जा चुका था। उसकी पूरी प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटर्नी के नाम पर उससे छीनी जा चुकी थी और उसे इस बात का अभी तक जरा सा भी अंदाजा नहीं था। नूर अपने अब्बा का इंतजार कर रही थी, उसका एग्जाम अभी अभी खत्म हुआ था और वो बाहर खड़ी थी। तभी एक गाड़ी आकर रुकी, दरवाजा खुला और उसके अब्बा इकबाल गाड़ी से उतरे। उनके माथे पर चोट के निशान थे और एक हाथ पर भी जख्म था। नूर का दिल घबरा गया, वो भागते हुए उनके पास आई। अब्बा ये क्या हुआ, आपको क्या हुआ, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। तभी रिदा आगे बढ़ी और बोली, हेलो आपकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया था, नूर ने कहा। नहीं, इकबाल ने तुरंत बात काट दी, मेरे साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। नूर हैरान रह गई। तो फिर ये सब कैसे हुआ, इकबाल ने नजरें चुराते हुए कहा। मैं सड़क पर गिर गया था, बस उसी वजह से, वो बात को हल्का दिखाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी हालत कुछ और ही कहानी बता रही थी। नूर को यकीन नहीं हुआ, वो लगातार सवाल पर सवाल करने लगी। कैसे गिर गए, अचानक कैसे चक्कर आ गया, इकबाल ने धीमे से जवाब दिया। बहुत तेज धूप थी, शायद उसी वजह से चक्कर आ गया। नूर अभी भी संतुष्ट नहीं थी लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी रिदा आगे आई और बोली, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। इसी बीच उसका फोन बजने लगा। उसने फोन की तरफ देखा और फिर धीरे से कॉल रिसीव कर ली।
प्लीज मेरी सीरीज पर कॉमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें।